आप हैं SBS हिंदी के साथ। आज के बुलेटिन में न्यू साउथ वेल्स में असिस्टेड डाइंग का कानून हुआ पारित, ऑस्ट्रेलिया की बेरोजगारी दर गिरकर 3.9% तक, और खेल में इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 रन से दी मात। अब समाचार विस्तार से। लेबर दल ने अपनी चुनावी लागत का खुलासा करते हुए बताया कि अगले 4 वर्षों में गठबंधन की तुलना में अतिरिक्त 7.4 बिलियन का खर्चा होने की संभावना है। इसमें शिशुपालन, वृद्धों की देखभाल, साथ ही टेफ और यूनिवर्सिटी के लिए अतिरिक्त शिक्षा स्थानों पर खर्च शामिल है। लेबर का कहना है कि इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था में प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, लेकिन विपक्ष ने यह पुष्टि भी की है कि वह जॉब कीपर भुगतान में लगभग $20 बिलियन को वापस लेने के लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे, जो कि महामारी के दौरान उन कंपनियों को दिया गया था जिनका कोई नुकसान नहीं हुआ। पिछले महीने के अभियान में किए वादे के अनुसार लेबर ने 19,000 से अधिक शरणार्थियों को टेम्पररी प्रोटेक्शन वीजा से परमानेंट वीजा पर लाने के लिए भी फंड आवंटित किया था। विपक्ष की कैथी गैलगर ने बताया कि उन शरणार्थियों के लिए एक नई वीजा श्रेणी बनाई जाएगी।
Under the new visa subclass, it would allow the same support as under existing visas, so they would be entitled to work, access Medicare, income support, English language tuition, and also things like trauma and torture counselling services.
इस बीच प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन विपक्ष की देर में आई चुनाव लागत की घोषणा की आलोचना कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष ने पिछली बार सरकार में रहने की से कुछ नहीं सीखा है। श्री मॉरिसन ने कहा कि जिस तरह से लेबर दल पैसों का प्रबंधन कर रहा है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया की सीमाओं का प्रबंधन भी करेगा। प्रधानमंत्री ने बेरोजगारी दर को संबोधित किया, जो गिरकर 3.9% हो गई है। अगस्त 1974 के बाद से ये सबसे निचला स्तर है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार की आर्थिक योजना काम कर रही है।
But at this very late hour, we've seen a piecemeal attempt to explain Labor's finances. What they are going to do is increase the deficits by $7 billion. When we released our costings, we were reducing the deficit by $1 billion.
ऑस्ट्रेलिया की बेरोजगारी दर गिरकर 3.9% हो गई है, जो अगस्त 1974 के बाद से बेरोजगारी का सबसे निचला स्तर है। पुरुषों के लिए बेरोजगारी दर 0.2% में से गिर गई है, जो अक्टूबर 2008 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर तक पहुंच गई है। पिछली अवधि में 4,000 से अधिक लोगों ने रोजगार प्राप्त की, लेकिन भागीदारी दर घटकर 63.3% हो गई। फेडरल ट्रेजरर जॉश फ्राइडनबर्ग का कहना है कि इन आंकड़ों से ये साबित होता है कि गठबंधन के तहत अधिक लोगों को नौकरियां मिली हैं।
अनएम्प्लॉयमेंट, अंडरएम्प्लॉयमेंट, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट आर ऑल लोअर टुडे अंडर द कोअलिशन देन दे वर अंडर लेबर।
उधर न्यू साउथ वेल्स में गंभीर रूप से बीमार लोगों को स्वेच्छा से अपना जीवन समाप्त करने का अधिकार देने वाला कानून गुरुवार को निचले सदन में पारित हो गया है। वर्षों की बहस और संशोधनों के बाद उच्च सदन से पूर्व स्वीकृति के बाद इच्छा मृत्यु समर्थकों ने इस निर्णय का स्वागत किया। ये कानून टर्मिनल डायग्नोसिस वाले लोगों को और 6 महीने तक जीने का मौका देता है, और 2 डॉक्टरों की सलाह के आधार पर स्वेच्छा से अपने जीवन को समाप्त करने का मौका देता है। यदि इस रिपोर्ट से आपको कुछ समस्याएं हैं और आपको तत्काल सहायता की आवश्यकता है, तो आप 131114 पर लाइफलाइन या 1-300-659-467 पर सुइसाइड कॉल बैक सर्विस पर कॉल कर सकते हैं। लेबर और गठबंधन ने भविष्य में विदेश पुनर्वास कार्यक्रमों के विस्तार पर बातचीत करने के लिए कोई वादा नहीं किया है। इससे 500 से अधिक शरणार्थियों और शरण चाहने वाले के भविष्य पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सरकार ने हाल ही में अगले 3 वर्षों में 450 शरणार्थियों को न्यूजीलैंड भेजने के लिए एक समझौता किया है और लगभग 250 सीटें यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के पुनर्वास की राह पर हैं। वर्तमान में देश में लगभग 1380 शरणार्थी और शरण चाहने वाले हैं, जो 2013 में रड लेबर सरकार द्वारा नियम लागू करने के बाद ऑस्ट्रेलिया में आए थे। ये नियम नाव में आने वाले शरणार्थियों को देश में बसने के से रोकने के लिए बना था। एक बार जब विदेशी सीटें भर जाएंगी तो सैकड़ों लोग वहीं फंसे रहेंगे। श्रीलंका से आए शरणार्थी थारनूश सेल्वरासा इस परिस्थिति के बीच में फंसे लोगों में से एक हैं और उन्होंने SBS न्यूज को बताया कि वे उसके लिए लड़ रहे हैं।
Some people like me is suffering in this community. That's why we need the I don't know, the future is still is uncertainly, but we are day by day, we lost our hope. And we last 9 years, we haven't get any chance to any hope in our life.
घरेलू निर्माण की दिग्गज कंपनी मेट्रिकॉन ने कंपनी से जुड़ी अफवाहों के बारे में बताते हुए कहा कि उनका कारोबार मजबूत बना हुआ है और उनके सभी लेनदारों को समय पर भुगतान किया जा रहा है। इस सप्ताह की शुरुआत में कंपनी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी 71 वर्षीय मारियो बेसिन की अचानक हुई मृत्यु के बाद ये अफवाहें फैल गईं। व्यवसाय के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए विक्टोरियन कोषाध्यक्ष ने आज इस कंस्ट्रक्शन कंपनी से मुलाकात की। आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेट्रिकॉन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर लैंगफेल्डर ने अफवाहों को खंडन किया और कहा कि कोषाध्यक्ष के साथ बैठक असामान्य नहीं है।
The government has been engaging industry. I believe they've been in contact with, you know, over a dozen builders over the last few days, and they continue to. We always work with all our partners, including the government, and really they want to know what's going on in the industry, and we spoke to them about what is happening in the industry.
चुनाव अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया है कि शनिवार को मतदान वाले दिन सभी मतदाताओं के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध रहेंगे। कुछ दूर दराज के समुदायों में कर्मचारियों की कमी बनी हुई है, लेकिन चुनाव आयुक्त टॉम रॉजर्स का कहना है कि इस वजह से यह भी हो सकता है कि कुछ ही मतदान केंद्र उस दिन नहीं खुल पाएंगे। बाढ़ प्रभावित उत्तरी न्यू साउथ वेल्स में इस बात की आशंका थी कि आपदा के कारण वहां तक की पहुंच प्रभावित होगी और 21 मई को लिजमोर में केवल एक मतदान केंद्र खुला रहेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई चुनाव आयोग ने SBS न्यूज को बताया है कि लिजमोर में 4 और आसपास के क्षेत्रों में और भी अधिक मतदान केंद्र खुले रहेंगे। मुद्रा दर की जानकारी में इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक अमेरिका में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत आज 70 सेंट्स है और भारत में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 54 रुपए और 21 पैसे हो गई है। खेल समाचार में कोडी सिम्पसन ने जुलाई के अंत में बर्मिंगहम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में जगह बना ली है। संगीतकार और अंतर्राष्ट्रीय तैराक कोडी सिम्पसन ने ऑस्ट्रेलियाई स्विमिंग चैंपियनशिप में 100 मीटर बटरफ्लाई के फाइनल में 51:96 समय के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया, जो राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने के लिए सटीक मापदंड है। उन्होंने कहा है कि अपनी जीत से वे बेहद खुश हैं।
It's a funny concept, right? But I obviously lived and breathed the sport growing up. You know, took a hiatus for the better part of 10 years and came back with just a fire that I couldn't put out and still can't put out.
उधर इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने कोलकाता को 211 रनों का लक्ष्य दिया था। लखनऊ टीम के क्विंटन डीकॉक और KL राहुल ने मिलकर धमाकेदार बल्लेबाजी की और कोलकाता के गेंदबाज एक भी विकेट हासिल नहीं कर पाए। डीकॉक ने 70 बॉल में 140 रन बनाए, वहीं राहुल ने 51 बॉल में 67 रन, जिसके बाद कोलकाता ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 208 रन बनाए। मार्कस टॉइनिस ने उमेश यादव को आखिरी गेंद पर बोल्ड कर लखनऊ को शानदार जीत दिला दी। इस मैच में हारने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का आईपीएल 2022 में सफर खत्म हो गया है और लखनऊ सुपर जायंट्स ने प्लेऑफ में अपनी जगह बना ली है। और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। पर्थ में एक या दो बौछार की संभावना, वहां का न्यूनतम तापमान 12 और अधिकतम 21 डिग्री तक जाएगा। एडलेड में आंशिक बादल रहेंगे और न्यूनतम तापमान 8 और अधिकतम तापमान 18 तक रहेगा। मेलबर्न में भी आंशिक बादल रहेंगे और यहां का न्यूनतम तापमान 10 और अधिकतम 16 डिग्री तक रहेगा। कैनबरा में ज्यादातर धूप रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान 1 और अधिकतम तापमान 15 डिग्री। सिडनी में बारिश की संभावना रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान 13 और अधिकतम 19 डिग्री तक जाएगा। ब्रिस्बेन में भी बारिश की संभावना रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान 17 और अधिकतम 23 डिग्री। डार्विन धूप के साथ, वहां का न्यूनतम तापमान 23 और अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक जाएगा। और वहां भारत की राजधानी नई दिल्ली में धुंध भरी धूप रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान 32 डिग्री और अधिकतम तापमान होगा 44 डिग्री। मौसम की जानकारी के साथ ही आज के समाचार वहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।
ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं? एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या फिर जहां आप पॉडकास्ट सुनते हैं वहां हम हैं।